लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, अमानवीय जीवन परिस्थितियों में हाशिए पर जीवन यापन करने वालों के लिए हम आपसे याचना करते हैं, ताकि सरकारी, गैर सरकारी और कलीसियाई संस्थाओं द्वारा उनकी अनदेखी न की जाए और न ही उन्हें कम महत्व का समझा जाए। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। राजा का क्रोध सिंह की दहाड़ जैसा है और उसकी कृपा दृष्टि घास तली पर ओस जैसी। मूर्ख पुत्र अपने पिता की विपत्ति है, झगड़ालू पत्नी निरंतर चूने वाली नल जैसी है। घर और संपत्ति पूर्वजों की विरासत है, किंतु समझदार पत्नी प्रभु का वरदान है। श्रोताओं, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 19वें अध्याय के 12 से लेकर 14 तक के पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में क्रोध, मूर्खता और झगड़े के बारे में कहा गया है कि ये दुर्गुण व्यक्ति को निश्चित रूप से विनाश की ओर ले जाते हैं। सूक्ति ग्रंथ का लेखक इस तथ्य के प्रति सचेत कराता है कि राजा अथवा शासक के क्रोध से बचना ही बुद्धिमानी है। कहता है कि जिस प्रकार से शेर की दहाड़ अपने आप में भयावह होती है, जो विनाश का एहसास करा देती है, यही बात राजा या किसी अन्य प्रभावशाली व्यक्ति के क्रोध के लिए भी सच है। बाइबल धर्म ग्रंथ में हम यूदा के वंश के विरुद्ध ईश्वर के कोप के विषय में पढ़ते हैं। प्रकाशना ग्रंथ के 6वें अध्याय में मोहरे खोलने का विवरण मिलता है। इनमें हम 4 घोड़ों के विषय में पढ़ते हैं, सफेद, लाल, काला और पीला। इन 4 घोड़ों को सृष्टि के अंत में होने वाली घटनाओं का प्रतीक बताया गया है। सफेद घोड़ा विजय यात्रा पर निकलता है, जिसके बाद लाल घोड़ा निकलता है और उस पर सवार व्यक्ति को पृथ्वी पर से शांति उठा देने का अधिकार प्रदान किया गया था, जिससे मनुष्य एक दूसरे का संहार करें। उसे एक बड़ी सी तलवार भी दी गई थी। फिर तीसरी मुहर खोली गई और काला घोड़ा दृष्टिगोचर हुआ, जो हाथ में तराजू लिए था। जबकि चौथी मुहर खुलने पर पीला घोड़ा दिखाई पड़ा और जो उस पर सवार था उसका नाम था मृत्यु, और उसके पीछे पीछे अधोलोक चला आ रहा था। श्रोताओ, यह सब ईश्वर के कोप का वर्णन है जो हमें प्रकाशना ग्रंथ में मिलता है, ताकि मनुष्य अपने मार्ग सीधे कर लें। ये सब एक चेतावनी के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। सूक्ति ग्रंथ के 19वें पद के 12वें पद में लिखा है, राजा का क्रोध सिंह की दहाड़ जैसा है और उसकी कृपा दृष्टि घास तली पर ओस जैसी। श्रोताओ, जंगल के तानाशाह शेर की दहाड़ से अधिक भयानक कुछ भी नहीं है, जिससे अन्य सभी जानवर कांप उठते हैं, भाग जाते हैं और छिप जाते हैं। इसी प्रकार जो राजा या शासक कानून से ऊपर होता है और बिना कानून के निरंकुश शासन करता है, और जिसकी इच्छा ही उसका कानून है, वह सिंह के समान है। इसके विपरीत यदि शासक उदार मना हो तो उसकी कृपा दृष्टि घास तली पर ओस जैसी होती है। ओस फिलिस्तीन की गर्म जलवायु में वनस्पति के अस्तित्व के लिए आवश्यक थी और इसीलिए इसे ईश्वर का एक वरदान माना गया है। मूर्ख पुत्र अपने पिता की विपत्ति है। यह सच है कि किसी भी माता पिता के लिए मूर्ख पुत्र या पुत्री का होना दुखदायी होता है। यह दुख बर्बादी की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि दुख पिता के स्वास्थ्य और जीवन को नष्ट कर देता है, और कभी कभी पिता मूर्ख बेटे को बचाने के लिए खुद को बर्बाद कर लेता है। इसी तरह झगड़ालू पत्नी भी बर्बादी का रास्ता बनाती है, वह निरंतर चूने वाली नल जैसी है। जो पत्नी अपने पति से अक्सर झगड़ती रहती और बहस करती रहती है, वह कम से कम तीन तरह से निरंतर टपकती रहती है। सबसे पहले तो वह हमेशा मौजूद रहने वाली झुंझलाहट और परेशानी है। दूसरी बात, यह अच्छी और मूल्यवान चीजों को बर्बाद कर नष्ट कर देती है। और तीसरी बात, पत्नी का झगड़ालू व्यवहार कुछ अंतर्निहित अथवा कुछ बुनियादी समस्या की ओर इशारा करता है। इस स्थल पर हमने आपको बाइबल आचार्य क्लार्क के एक कथन का स्मरण दिलाया था, जो कहते हैं, जिस व्यक्ति को ऐसी पत्नी मिली है वह उस किराएदार के समान है जिसे खराब छत वाली झोपड़ी मिली है, जिसके हर हिस्से से या तो बारिश गिरती है या टपकती रहती है। वह इन मल के संपर्क में आए बिना न तो बैठ सकता है, न खड़ा हो सकता है, न काम कर सकता है और न ही चैन से सो सकता है। ईश्वर ही उस आदमी की मदद करें जो घर अथवा पत्नी के साथ ऐसी स्थिति में है। एक अरबी कहावत को दोहराते हुए डेलिट्स कहते हैं कि तीन चीजें एक घर को असहनीय बनाती हैं, और वे हैं तक, नक और बक। तक यानी कि बारिश का रिसाव, नक यानी पत्नी का चिड़चिड़ापन और बक यानी कीड़े। झगड़ालू पत्नी के विपरीत है समझदार पत्नी, जो प्रभु का वरदान है, क्योंकि घर और संपत्ति तो व्यक्ति को पूर्वजों से विरासत में मिल जाती है, किंतु समझदार पत्नी का मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए समझदार और प्रज्ञावान पत्नी को ईश्वर की देन कहा गया है। विवेकशील पत्नी विरासत से परे एक अनुपम वरदान होती है।
कृपा वरदान अनुग्रह दो, जो फिर में मुझे कर दो, जो तिर में मुझे कर दो।
आगे 19वें अध्याय के 15वें, 16वें और 17वें पदों में लेखक कहता है, आलस्य मनुष्य को गहरी नींद में सुला देता है, आलसी का पेट भूखा होता है। जो आज्ञाओं का पालन करता वह अपने जीवन की रक्षा करता है, जो अपने आचरण का ध्यान नहीं रखता वह मर जाएगा, और जो दरिद्रों पर दया करता वह प्रभु को उधार देता है, प्रभु उसे उसके उपकार का बदला चुकाएगा। श्रोताओ, आलस्य व्यक्ति को गहरी नींद में ले जाता है। आलस्य के साथ कई समस्याएं होती हैं, और उनमें से एक यह कि आलसी व्यक्ति दिन ब दिन अधिकाधिक आलसी होता जाता है। इसी को लेखक ने गहरी नींद का नाम दिया है। आम तौर पर जब व्यक्ति महत्वपूर्ण कार्यों में विलंब करने लगता है तो इसका कारण उसका आलस्य होता है। ऐसी स्थिति में वह बारंबार थकान महसूस करेगा, उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी और कभी कभी उसका आलस्य भय में भी बदल सकता है। वह सबसे डरने लग जाता है और आसानी से विचलित हो जाता है। इसलिए सूक्ति ग्रंथ के लेखक का परामर्श है कि व्यक्ति आलस्य का परित्याग कर दे, जो उसे भूखा रखता और उसकी शक्ति और साहस को तोड़ देता है। आलसी व्यक्ति के विपरीत जो व्यक्ति नियमबद्ध ढंग से अपना जीवन यापन करता है, जो आज्ञाओं का पालन कर जीता है, वह अपने जीवन की रक्षा करता है। 16वें पद में लेखक कहता है, जो अपने आचरण का ध्यान नहीं रखता वह मर जाएगा। श्रोताओ, ईश वचन के अनुकूल आज्ञा का पालन करना वास्तविक व्यावहारिक लाभ प्रदान करता है। इसीलिए लेखक कहता है कि आज्ञाकारिता उस बुद्धिमान पुरुष या महिला के जीवन और आत्मा की रक्षा करती है जो ईश वचन के अनुसार जीवन यापन करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति आज्ञाओं और नियमों की अवहेलना कर देता तथा अपने आचरण का ध्यान नहीं रखता, उसका जीना जीना नहीं है, वह अनश्वर इंसान जैसा है। सच ही तो है, जो अपने चालचलन के प्रति लापरवाह रहता, जो प्रज्ञा और बुद्धि को त्यागता है, वह मृत्यु को निमंत्रण देता है। ईश आज्ञाओं का पालन हमें अनश्वरता से बचाता तथा जीवन की ओर ले जाता है। 19वें अध्याय के 17वें पद में लेखक आगे कहता है, जो दरिद्रों पर दया करता वह प्रभु को उधार देता है, प्रभु उसे उसके उपकार का बदला चुकाएगा। श्रोताओ, जब हम गरीबों के प्रति प्रेम और दया व्यक्त करते हुए दान देते हैं, तब हमारा धन बर्बाद नहीं होता, वह फलप्रद होता है, क्योंकि दरिद्रों को दिया गया दान स्वयं प्रभु ईश्वर को उधार देने के समान है, और प्रभु को उधार देना बदले में आशीर्वाद सुनिश्चित करना है। हम गरीबों पर दया दर्शाकर जो कुछ भी देते हैं, ईश्वर उसका प्रतिफल हमें अवश्य देंगे। यह प्रभु का वादा है। अस्तु, उदार और दयालु दान करने से हम कदापि हार न माने।
कृपा वरदान अनुग्रह दो, जो फिर में मुझे कर दो, जो तिर में मुझे
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन में सिनोडालिटी पर आगामी धर्म सभा के पूर्व नाबालिगों की सुरक्षा के लिए गठित परम धर्म पीठ आयोग ने धर्म सभा की चर्चाओं के दौरान बच्चों की सुरक्षा पर गंभीरता से और बार बार विचार विमर्श करने की अपील की है। अंग्रेजी और इताली भाषाओं में प्रकाशित एक बयान में, जिसका शीर्षक है नए कार्डिनलों के निर्माण के लिए सभा के अवसर पर कार्रवाई का आह्वान और धर्माध्यक्षों की धर्म सभा की 16वीं महासभा, आयोग ने कार्रवाई का आह्वान किया है। पोप फ्रांसिस ने आयोग को, जो विश्वास के सिद्धांत के लिए रोमन कुरिया के विभाग के भीतर है लेकिन अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखता है, प्रोत्साहित किया है कि वह आवश्यक बातें रख सकता है और दूसरों को अपने प्रयासों में बाधा डालने से रोक सकता है। आयोग के सदस्यों ने लिखा है, हम मांग करते हैं कि कलीसिया में यौन शोषण आपकी चर्चाओं में शामिल हों, क्योंकि वे शिक्षा, प्रेरिताएं, प्रशिक्षण और प्रशासन को संबोधित करते हैं। मेल मिलाप वाले समुदाय के रूप में कलीसिया की पौत्र उपासना और कलीसिया की इस सबसे अंतरंग विफलता के अभिव्यक्ति को भी पर्याप्त समावेश मिलना चाहिए। वे स्वीकार करते हैं कि हालांकि कभी कभी यह सवालों की एक कठिन सूची के समान लग सकता है, वे चुनौती का सामना करें ताकि वे सुसमाचार की घोषणा करने में कलीसिया की विश्वसनीयता के लिए यौन शोषण से उत्पन्न खतरे का व्यापक तरीके से सामना कर सकें। वे धर्म सभा के प्रतिभागियों से पीड़ितों की गवाही को अपने काम में जगह देने के लिए सार्थक समय और स्थान समर्पित करने का आग्रह करते हैं। यह देखते हुए कि अधिकांश धर्म सभा के प्रतिभागियों के पास कलीसिया में यौन शोषण का सामना करने या उससे निपटने के अपने अनुभव हैं, जो विचार विमर्श के लिए उनका एक स्पष्ट हिस्सा बन सकता है। पोप फ्रांसिस ने अपने कार्यकाल के दौरान बार बार बच्चों और कमजोर व्यक्तियों के यौन शोषण के संकट से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कानून जारी करने का आह्वान किया है, जिसका उद्देश्य किसी भी स्तर पर दुर्व्यवहार करने वाले और इसे छिपाने वालों को दंडित करना। उन्होंने फरवरी 2019 में नाबालिगों की सुरक्षा के लिए पहला शिखर सम्मेलन बुलाया था, जिसने दुर्व्यवहार का सामना करने के लिए दुनिया के धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के सभी अध्यक्षों को रोम में एक साथ एकत्रित किया था। आर्मेनिया के अधिकारियों का कहना है कि लगभग 42,500 आर्मेनियाई लोग नगोर्नो काराबाख से भाग गए हैं, जो कि युद्धग्रस्त क्षेत्र की लगभग एक तिहाई आबादी है, जिस पर पड़ोसी अजरबैजान ने पिछले सप्ताह फिर से कब्जा कर लिया है। लोग भूखे और थके हारे हैं। अजरबैजान द्वारा और अधिक हमलों की आशंका के बीच हजारों लोग, जिनमें मुख्य रूप से ईसाई अर्मेनियाई लोग हैं, नगोर्नो काराबाग से भाग रहे हैं। हताश लोग अपनी बची खुची संपत्ति को अपनी पुरानी कारों, मिनी बसों या पिकअप ट्रकों की छतों पर बांध कर ले जा रहे हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, आखिरी दिन हम मुश्किल से बच पाए, वह डरावना था। कई लोग आर्मेनिया की सीमा के पास एक रिसोर्ट शहर गोरिस में भाग गए हैं। एक अन्य व्यक्ति ने हताश होकर कहा, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, इस जीवन में कभी नहीं। बड़े पैमाने पर पलायन तब शुरू हुआ जब अजरबैजान ने एक हमले में नगोर्नो काराबाग पर कब्जा कर लिया, जिसमें कहा जाता है कि सैकड़ों लोग मारे गए, लोगों के घर और यहाँ तक कि एक स्कूल घर भी नष्ट कर दिया गया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, वे हम पर जोरदार बमबारी कर रहे थे, बच्चे स्कूल भाग गए। इसके बाद अजरबैजान ने मोटर गन से स्कूल पर हमला किया, वहाँ हमारे बच्चे घायल हो गए। लेकिन घोषित युद्ध विराम के बाद भी शरणार्थियों के लिए खतरा बना हुआ है। नगोर्नो काराबाग की राजधानी, जिसे आर्मेनिया द्वारा स्टेपनाकाट और अजरबैजान द्वारा खान केंडी के नाम से जाना जाता है, के पास एक ईंधन डिपो में विस्फोट के बाद धुआं उठ रहा था, जिसमें कम से कम 70 लोग मारे गए। घायल लोगों की भीड़ से अस्पताल भरे पड़े हैं। इस त्रासदी ने पर्याप्त भोजन और दवाओं के बिना लोगों की व्यापक पीड़ा को रेखांकित किया है, क्योंकि अजरबैजान ने महीनों तक सीमा की एक प्रमुख सड़क को प्रभावी ढंग से अवरुद्ध कर दिया है। आर्मेनिया की राजधानी एरेवन में अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की प्रमुख समंता पावर ने क्षेत्र के लिए आपातकालीन अमेरिकी सहायता में 11.5 मिलियन डॉलर की घोषणा की है। उन्होंने अजरबैजान से नगोर्नो काराबाग में संघर्ष विराम बनाए रखने और नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, यह बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्र मॉनिटरों के साथ साथ मानवीय संगठनों को नगोर्नो काराबाग में उन लोगों तक पहुंच मिले जिनकी अभी भी सख्त जरूरत है। पावर ने इससे पहले आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का समर्थन पत्र सौंपा था। यूरोपीय संघ समर्थित शांति वार्ता में आर्मेनिया और अजरबैजान के प्रतिनिधि मिल रहे हैं। 1990 के दशक में सोवियत संघ के पतन के बाद से दोनों देशों ने नगोर्नो काराबाग पर दो युद्ध लड़े हैं। इस बीच इस क्षेत्र की 9 महीने की लंबी नाकाबंदी और पिछले सप्ताह आर्मेनिया अजरबैजान सीमा पर सैन्य हस्तक्षेप के बाद, जब नगोर्नो काराबाग के हजारों आर्मेनियाई क्षेत्र से भाग गए हैं, कारितास इंटरनेशनल के महासचिव एलिस्टे डंटन ने जोर देकर कहा है कि जो लोग संकट से भाग गए हैं उन्हें मानवीय सहायता मिलनी चाहिए, विस्थापित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और सुरक्षित मार्ग एवं स्वतंत्रता सहित उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, और जो लोग भाग गए हैं उन्हें उनकी इच्छानुसार वापस लौटने की अनुमति दी जानी चाहिए। पोप फ्रांसिस ने धर्माध्यक्ष धर्म सभा के पूर्व सृष्टि के मौसम की याद दिलाते हुए सभी क्रिश्चियनों को मिलकर रहने, एक साथ काम करने और प्रार्थना करने का आह्वान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इस सृष्टि के मौसम में हमारी साझा धर्म सभा यात्रा में आए हम येसु ख्रिस्त के अनुयायियों के रूप में जिए, काम करें और प्रार्थना करें, ताकि हमारा आम घर एक बार फिर जीवन से भर जाए। लो सल्वातोरे रोमानो में प्रकाशित एक लेख धर्माध्यक्षों की धर्म सभा के विकास पर नजर डालते हुए करीब 60 वर्षों पहले पोप पॉल छठवें के आरंभिक विचार से लेकर पोप फ्रांसिस की नई अवधारणा और अक्टूबर में अगली धर्म सभा के आगमन तक के इतिहास पर प्रकाश डालता है। धर्माध्यक्षों की धर्म सभा का जन्म 1965 में संत पापा पॉल छठवें की पहल पर हुआ था, जिन्होंने मोतु प्रोप्रियो अपोस्तोलिका सोलिची तूदो में इसे सार्वभौमिक कलीसिया के लिए धर्माध्यक्षों की एक स्थायी परिषद के रूप में परिभाषित किया था। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।